देवजानी के दर से लड़के से पीछे सर्विता के भी गर्भ से कुछ लड़के हुए, किंतु अनिति पूर्वक हुआ। कुछ दिनों के बाद में शुक्राचार्य को बात मालूम हुई कि हमारी लड़की की उपेक्षा करके राजा की लड़की से इसको भी लड़का हो गया, कोई ना विषम पा गया क्या हो तो बूढ़ा भी हो गया, तो राजा बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया तो लड़की बोली ऐसे हमारे पति बूढ़े हो गए। फिर शुक्राचार्य से निवेदन किया हमारे पति फिर नौजवान हो गए। उन्हें कहा जब ऐसा नहीं होगा, एक बात होगा, तुम्हारे जितने लड़के हैं 3-4 लड़के हैं अपनी युवावस्था तुमको दे देंगे और तुम्हारी बूढ़ावस्था ले लेंगे, तो ये ऐसा हो सकता है तुम नौजवान हो। उन्होंने अपने लड़कों से मांगा कि तुम अपनी युवावस्था ले लो और मैं कुछ नहीं तुम्हारी युवावस्था लेकर के रहूंगा और संसार भोग करूंगा। उन्होंने अपने लड़के से कहा, उनका नाम था जदू। जदू ने हर भी जैसा नहीं, मेरा जो जन्म हुआ है युवावस्था ये भगवान का भजन करने के लिए लगाऊंगा, तुम्हें क्यों दूं, पिता है तो तुम अपने कर्म के फल से बूढ़े हुए हो, मैं बूढ़ा होकर के अभी मर जाऊं मैं नहीं चाहता, मैं अपनी युवावस्था में बचपन से ही भगवान का भजन करूंगा। तो जो लोग भगवान का भजन नहीं करते बचपन से, बूढ़ा होने पर वही गति होती है जो रावण की गति हुई, कुंभकर्ण की गति हुई, बड़े बड़े राजाओं की गति हुई। अभी हमारे देश में इंदिरा गांधी की, उनके 2 पुत्रों की जो गति हुई जो भगवान का भजन नहीं करते और अपनी युवावस्था को संसारी कामों में लगाते हैं और बूढ़ा हो जाने के बाद में पछताते हैं, सिर धूल धूल कर काल ही कर्म ही ईश्वर ही दोष लगा उनको, दोष देते अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, काल ऐसा है, हमारा भाग्य ऐसा है, दोष देते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा जन्म ही मनुष्य भगवान का भजन करने के लिए हुआ, अपनी युवावस्था को विष्णु के संग्रह में लगाते हैं और जिसके लिए करते हैं वही उनको मारता है। औरंगजेब, शाहजहां, ये सब इसके दृष्टांत हैं। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके इसलिए किया, अपने भाइयों को मरवा डाला, इसलिए भाई जगत में शांति और सुख नहीं है, भगवान के भजन में ही एकमात्र सुख और शांति और किसी चीज में नहीं है, इस चीज को पहले समझिए, बचपन से ही भगवान का भजन कीजिए। तो उसने नहीं किया, हम तुमको अपने राज्य से वंचित करते हैं, तुम राजा नहीं हो सकता, तुम्हारे परिवार का तुम्हारे बेटे बेटे के बेटे बेटे राजा नहीं हो सकेंगे, उन्हें कोई परवाह नहीं हम भगवान का भजन करेंगे। उनमें से एक लड़के ने दे दिया, उसने भोग किया, राजा भोग देने तक भोग करने के बाद भी शांति नहीं मिली, कुछ तरह से भी शांति नहीं मिली। तो जिसका जिसने कहा जिसे मैं युवावस्था में भगवान का भजन करूंगा तो मैं नहीं दूंगा, भगवान ने देखा कि मेरे लिए इसने राज्य उसको पूरा दिया, इसलिए उसी के कुल में भगवान आए, उन्हीं के वंश में जदु महाराज जी के वंश में एक राजा हुए अजामिर देवमीर। उनकी 2 पत्नी, एक थी क्षत्रियाणी और दूसरी थी वैश्याने गोप की कन्या। गोप की कन्या से परजन्य महाराज का जन्म हुआ गोप, और उससे हुए सूरसेन क्षत्रियाणी से, सूरसेन के बेटे हुए वसुदेव जी, परजन्य के बेटे हुए नंद महाराज। एक हो गए गोप और एक हो गए क्षत्रिय। उसी कुल में मथुरा में आज के दिन में आज से 5,500 वर्ष पहले इसी मथुरा में कृष्ण अंश के रूप में जन्म इनका यहीं पर हुआ और गोकुल में परिपूर्ण रूप से स्वयं भगवान के रूप में कृष्ण अवतरित हुए। इसलिए बहुत से कारण थे, जब धर्म की हानि होती है तब धर्म की रक्षा करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, असुरों के विचार को दबाने के लिए भगवान का आविर्भाव होता है। अभी शायद कुछ विलंब है इसलिए भगवान का अवतार नहीं हो रहा, किंतु मैं देख रहा हूं जब जब गायों कटती हैं और धर्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मणों पर संतों पर अत्याचार होते हैं तब असुर लोगों का बढ़ापन होता है और उसी समय भगवान का अवतार होता है। कल अभी गया था जन्मभूमि में, वहां देखा सचमुच में कंस की नगरी मथुरा है। श्रद्धालु जातियों को वहां पर मैंने देखा नहीं, वहां देखा केवल कंस के चर पुलिस अघासुर बकासुर और जितने कंस वक्त इत्यादि के जितने चेले वहां पर भरे हुए हैं, बंदूक और ये सब प्रयोजन इत्यादि सब दिए हुए। साधु संतों को भीतर नहीं जाने देते और अपने परिवार के बूढ़ों को लड़कियों को लड़कियों को लेकर के घूम रहे हैं। किसी को दर्शन करने के लिए इजाजत नहीं, बड़ी मुश्किल से चारों तरफ से साधु लोगों को भी देखेंगे तुम्हारी गोली में ये क्या है, मारा इसमें कुछ छिपा तो नहीं रखा, दंड में क्या चीज है। अच्छे संतों को नहीं पहुंचने देंगे और उनके घरों के बुढ़िया बूढ़े लड़के लड़कियां सभी लोग ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये मैं देखता हूं कि ये कंस का ठीक राजा का राज्य अभी लौट आया है, वहां पर जो जाएंगे वो समझेंगे जैसे वो कैसा राज्य उनका लौट आया। मुसलमानीपुर में भी जितना अत्याचार नहीं हुआ, अंग्रेजों के समय में भी जितना अत्याचार नहीं हुआ उसे अधिक अत्याचार मैं समझता हूं अब हो रहा है। ये लोग कहते हैं कि ये भी तो प्रजाओं के लिए, लोगों के लिए, भलाई के लिए, रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। कंस भी कहा वसुदेव जी को जेल में देकर हथकड़ी देकर और पुलिस लगा दिया चारों तरफ में, कहा जी ये तो इनकी रक्षा के लिए हम कर रहे हैं, ऐसे ही ये सब करते हैं। तो आज के इस वातावरण में देवी वसुदेव जेल में थे, 8 महीने का गर्भ था और उधर यशोदा देवी को भी था एक साथ में, इस उल्लासमय वातावरण में सभी लोग प्रसन्न थे। नदियां बड़ी शांत थी, आकाश में मेघ धीरे धीरे गर्जन कर रहे थे, रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही थी। ऋषियों के यज्ञ मंडप अपने आप आग से जल उठी, चारों तरफ में स्वाहा स्वाहा होने लग गया, हरिनाम का कीर्तन होने लगा, साधु संत लोग प्रसन्न हो गए, नदियां लबालब भर गई और चारों तरफ में कमल खिल गए। ऐसी स्थिति में आज के 12 बजे रात में उनका जन्म होगा, उसके संबंध में हम बतलाएंगे। मालूम होता है देवकी और वसुदेव पर जितने अत्याचार हुए अभी असुरों के अत्याचार में जल्दी अभी कमी है, इसलिए प्रभु हम लोगों की नहीं सुन रहे। इसलिए आप लोग सभी लोग हरि नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, हमने आयोजन इसलिए किया है, रंग ढंग के अपने कर ले के नहीं, इस चीज को बतलाने के लिए। भगवान का भजन नहीं करेंगे सुखी नहीं रहेंगे, लाख रुपया कमाइए, व्यवसाय वाणिज्य कीजिए, रुपए आएंगे वही रुपये आपके जीवन का काल हो जाएगा। इसलिए ये सब चीजें हों जीवन निर्वाह के लिए, इसकी जरूरत है। किंतु जीवन बस जीवन भर यही करते रहेंगे, भगवान का भजन नहीं किया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उससे हमारा संबंध क्या है, कैसे जीवन में सुखी रह सकते हैं, ये सब नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी नहीं सुखी रह सकते हैं। इस चीज को समझिए। इसलिए आप लोग जिस रूप में है उसी रूप में रखे, भगवान का भजन कीजिए, जीवन का निर्वाह कीजिए, इस तरह से आप लोग इस जीवन में सुखी रहे, परलोक में सुखी रहे। अभी हमारा कीर्तन हम लोगों के लिए करेंगे लोग, आप लोग कीर्तन करो। और एक तुम भी कीर्तन करना, अभी तुम कीर्तन को संचालन करो, उनको भी ज्ञान दिलाए। अच्छा अच्छा कीर्तन होना चाहिए, अच्छा अच्छा
राधा की सेवा की जाएगी, किंतु रहना कैसे? माँ झुकी आप लोग सुने हैं, आप लोग तो देखी है, आप लोग मधु करिए, माँ भजन करिए, मधु जैसे एक एक फूल से सांस भरा रस लेता है, किसी फूल का कोई कुछ नहीं निकलता, वैसे ही सुन करो, बड़े बड़े राज्यों को छोड़कर धन संपत्ति छोड़कर पत्नी पुत्र और सबको छोड़कर वृंदावन में करते हैं, डेरा का कर खाने के लिए कुछ नहीं, घर में जाते हैं माधवी आधी रोटी आधी रोटी मांगते हैं, एक रोटी नहीं वो भी संस्कार होने पर जो किसी का चेहरा न देखे सौंदर्य नहीं हमारे आंखों में आए, और उनकी निगाह तक राधा राधे का रोटी का टुकड़ा उनका जूठा टुकड़ा उनको मिल गया बिना नमक के, सूखी है तो उसको पानी में भी जाकर उसी से पेट खाता थे, कृष्ण कृष्ण और देखिए किसी में क्या प्रश्न हो जाएगी, दादी सारी बात बनाएगी हो जाएंगी, तू दादा कविता को पा रहे पद्य को पा रहे तू दास को अभी कभी लोग जान रहे हैं, उसी सूर नगरी के लिए रहने वाले ये दोनों बाप और बेटे हैं, इनके पिताजी हाथ हाथ के संगीत कलाकार वाले एक ने ये लोग भी वैसे ही हैं, मातोश्री देने वाले हम लोग, मातोश्री लेने वाले मातोश्री गाता के भी संसार को छोड़ करके बड़े बड़े नरेंद्र के लड़के लोग राजा लोग माँ भक्ति से बनी बात आते थे, नमक भी नहीं लगाते थे, कभी रात में सो गए नहीं तो नहीं सो गए आज घंटा और 15 मिनट हुआ, कभी मुट्ठी भर चाहे कभी उन्हीं मना, ऐसे रह जाते बजे में आप लोगों की माँ भक्ति लेकर के खाते थे, उस समय आप लोगों के बंसर लोग भी बड़े सभी आ गए थे, इसलिए आपके घर में खाते थे, आज तक क्या चाहिए ये वृंदावन की महिला है, एक दिन पलक भी रहिए कोटि कोटि अपराध हो जाएंगे, राधा कृष्ण के चरणों में है कोटि कोटि होगी और जन जन आप हाथ में पड़ जाएगा। आगे सुनिए, यद्यपि ऐसी लीलाएं की हैं जिनमें ब्रह्मा इत्यादि तक कंकर तक मुक्त हो जाते हैं, भगवान की दो लीलाएं हैं, एक लीला है ऐश्वर्य पद और दूसरी लीला है माधुर्य पद। यद्यपि कृष्ण समस्त अवतारों के अवतारी हैं, जितने अवतार निकले हैं राम सिंह कल्कि वामन इत्यादि सब कृष्ण से निकले हैं, वही गोप के लड़के ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ब्रज की गलियों में जो खेले हैं वो समस्त ईश्वरों से भी ईश्वर हैं, वे पुलिसक शास्त्र इत्यादि कहते हैं, कोई कोई कहते हैं ऐसा भी कृष्ण वेदों में ही है, जो गुल्लू जैसे हैं जिनको नेत्र नहीं है वो नहीं देखते, वेद पुलिसक शास्त्र समस्त जगहों में कृष्ण के नाम है, कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए उन्हीं के राम उन्हीं के सिंह उन्हीं के सल्फी बानन इत्यादि 24 प्रकार के अवतार निकलते हैं, सबके मूल हैं। इनकी लीलाएं दो प्रकार की हैं, एक ऐसी लीलाएं हैं मधुर लीलाएं जो ब्रज में गोकुल में जन्म लिया और वहां पर किया। दूसरी लीलाएं हैं मथुरा और द्वारका की, यहां पर उन्होंने शंख चक्र गदा पत्र धारण किए, बड़े बड़े अश्रुओं को क्षण मात्र में निधन कर दिया, वो दूसरी लीला है। कंस को पछाड़ा, ये उनकी ऐश्वर्यमय लीला है, जन्म दिया शंख चक्र पत्र धारण करके, ये ऐश्वर्यमय लीला है। और माधुर्यमय लीला का उसमें से एक ये वर्णन कर रहे थे, ये यशोदा की गोदी में है, चंद्र को देखा रोने लगे, मैया में चांद लूंगा, उन्होंने सोचा कि मक्खन का लौना है, और रोने लगे, कौन रो रहे हैं, समस्त ईश्वरों के ईश्वर, स्थिति प्रलय करने वाले ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सबके आदि स्वयं अनादि हैं, रो रहे हैं। मैया ने कहा जी इसको कैसे मनाएं, उन्होंने कहा कि बेटा देखो यहां पर है, घड़े में दिखलाया चांद को, अब उस चांद को वहां से लेने के लिए मैं चल गए। यशोदा जी ने कहा देखो ये आकाश में चांद है, किंतु इसमें बीच है, मतलब जब बीच कैसे लग गया, समुद्र मंथन से निकला, उसमें बीच निकला था इसलिए लग गया, इसको लेने से आदमी मर जाता है, मतलब किंतु कृष्ण में चल रहे हैं कि मैं तो चांद लूंगा, मैं मक्खन लूंगा, मैं चांद लूंगा। मैया ने छिप करके कहीं से और मक्खन मंगा लिया और उसको कहा कि घड़े से झुटमुट को निकाल करके कहीं ले, पहले तो ले लिया, फिर घड़े में देखा चांद को उसका परछाई, और फिर होने लगे ये मैया हमको बहका रही। ये सब लीलाएं क्या है, ये मधुर लीलाएं है, ब्रह्मा इत्यादि मोहित हो जाएंगे, असुरों को मारने में ये सब नहीं मोहित होंगे। यशोदा जी एक दिन आंगन में खड़ी हैं और कृष्ण में चल रहे हैं उनकी गोदी में चढ़ने के लिए, यशोदा जी अंगुली ऐसे दिखा करके कह रही हैं तू हमारे गोदी में नहीं चढ़ सकता, मैं तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी, तू अभी मैंने स्नान कराया और तुम मट्टी में लौट रहे हो, घर घर में मक्खन चोरी करते हो, मैं तुझे कभी गोदी नहीं। और कृष्ण मचल करके रो रहे हैं, मिट्टी में लौट रहे हैं, और उसी समय नारद जी आकर के देख रहे हैं, ओ यशोदा तू ने कैसा तप किया, पूर्व जन्म में तपस्या की, कौन से तीर्थों में स्नान किया, जो आज विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि करने वाले ईश्वरों के भी ईश्वर तेरी गोदी में ललने के लिए ललक रहा है, और तुमसे ऐसे शासन कर रही है, डांट रही है, जम भी मृत्यु भी जिसके भय से कांपती है, जिसका एक बार नाम लेने से मृत्यु भी चल जाती है, और वो तुम्हारी गोदी में चढ़ने के लिए निकलता है, ये सब माधुर्य की लीला है। गोपियों से जो प्रेम किया ये माधुर्य की लीला की परम सीमा है, लोग नहीं समझ पाते मधुर लीलाओं, इसलिए वो कहते हैं कि ये तो कृष्ण कामी था, ब्रज का जो कृष्ण, और महाभारत का जो लड़ने वाला युद्ध था भीष्म पितामह से, वो भगवान था, भगवान नहीं महापुरुष थे, उसको भी भगवान नहीं मानते। सब लोगों को एक समझते हैं, सब देवताओं को भी कृष्ण के बराबर समझते हैं, इसे यह बात ठीक नहीं। अरे छुट्टियां भेद तक भी तपस्या की काफ कोटि कोटि जन्मों तक, तब वो गोपी के रूप में आई, तब कृष्ण से प्रेम किया, यही प्रेम जगत का आधार है, कृष्ण का स्वरूप ही यह प्रेम है। यदि कृष्ण की ऐसे लीलाएं नहीं होती तो कृष्ण का कोई महत्व नहीं होता, कृष्ण का महत्व यह है कि गोपियां उनसे किस प्रकार से प्रेम करती थी,
कृष्ण प्रेम के विषय हैं, गोपियां प्रेम की आश्रय हैं। जगत में ऐसी कोई उपासना नहीं है, इसलिए बतलाया शास्त्रों में आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय सद्धाम वृंदावनम रम्याकाश उपासना बजुपद वर्गे जा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो सतम सत्रो। कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र नंदन ये सर्व आराध्य हैं, ब्रज भी उन्हीं के समान में आराध्य है। जो मथुरा में जन्म लिया वो कृष्ण की एक वैभव प्रकाश थे, स्वयं भगवान नहीं, ब्रज में जो जन्मे पुत्र के रूप में यशोदा के गर्भ से ये स्वयं भगवान थे और देवकी के पुत्र में अंश की भगवान, दोनों मिलकर के फिर एक हो गए जब वसुदेव जी ले गए। इसको हम पीछे बतलाएंगे, यशोदा जी के गर्भ से निकले हुए माधुर्य के परिपूर्णतम हैं और देवकी के गर्भ से जो पैदा हुए वो आश्चर्यमय विग्रह इनके अंश थे। इसलिए ब्रज में जो लीलाएं हैं प्रेम की लीला भी, कृष्ण प्रेम के स्वरूप है, रसो वैसा इत्यादि कहा गया। राम में भी जो चीजें नहीं है, यद्यपि राम और कृष्ण दोनों एक हैं, किंतु राम में भी जो चीजें नहीं है जो कृपा नहीं कर सकते, कृष्ण वो कृपा कर सकते हैं। कृष्ण किसी के पति भी हो सकते हैं, प्रियतम भी हो सकते हैं, बेटे भी हो सकते हैं, किसी के सखा हो जाएंगे, राम नहीं हो सकते सब कुछ, नारायण इत्यादि नहीं हो सकते। यही तो कृष्ण की खूबी है, जो कि जिनकी बुद्धि कम है वो इन चीजों को समझ नहीं पाते, इसलिए कृष्ण को बतलाया गया एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण ये स्वयं भगवान, राम आदि उनके अंश हैं। इन चीजों को समझ करके ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का भजन करना चाहिए, इसलिए उनका अवतार होता है। गोपियां प्रेम की ध्वजा है, श्रीमद भागवत प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। यही भागवत कहता है कि गोपियों की जैसा और प्रेम विश्व में प्रेम किसी नहीं, कृष्ण के प्रति उन्होंने कुछ चाहा नहीं प्रेम के बदले में। प्रेम क्या है? उस प्रेम करने के बदले प्रेम न हो और कोई चीज न मांगे, अन्य अभिलाषिता इत्यादि बदला है। इसलिए ऐसा कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति हो तो कृष्ण उसके वशीभूत हो जाता है। इसलिए कृष्ण का प्रकाश है। अभी आप लोग संत सुन
संगीत है सबका साथ ये कृष्ण नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु हरे कल्याण के मंत्र चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद सुंदरी को कह रहे हैं
कि तुम हरि नाम की दीक्षा मांग करके ले आओ, आटा रुपया पैसा नहीं, पति जी की दीक्षा मांगना चलते फिरते उठते बैठते सोते सीखते समय पैर भी चलते समय में बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का उच्चारण करो। खाते समय पीते समय में बिना स्नान किए हुए स्नान किए हुए जैसे भी हो यह काम निकल जाएगा, तो जगत से तो मुक्ति भी हो जाएगी और साथ साथ में कृष्ण का प्रेम मिलेगा। इसलिए समस्त नामों का ये सार महामंत्र है। इसलिए संकीर्तन यदि हो भी तो इस नाम का जरूर महामंत्र जरूर हो और घर में रह करके पवित्र अपवित्र समस्त अवस्थाओं में इस कृष्ण का नाम कीर्तन करना ही चैतन्य महाप्रभु की प्रधान शिक्षा है, विज्ञान शिक्षा है, कृष्ण की शिक्षा है। इसलिए आप लोग जिस अवस्था में रहे यदि इस नाम को करेंगे समस्त मंत्रों का उपनिषदों का सबका ये सार है ऐसा समझ करके अपने जीवन में आचरण करें। अभी आप लोग कीर्तन सुन लें, पहरेदार लगे हुए हैं और इसी समय में 12 बजे उसी समय में कृष्णचंद्र जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आविर्भूत हुए। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र की। और यशोदा देवकी और वसुदेव जी स्तव स्तुति करने लगे। और जिस समय में मथुरा में कृष्ण पैदा हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर, उस समय 16 वर्ष के नौ युवक जैसे किशोर जैसे सुंदर सुंदर घुघराले अलके बाल के, सुंदर अलंकार, कौस्तुभ मणि, शंख चक्र गदा इत्यादि को धारण किए हुए। किसी को 16 वर्ष का ऐसा बच्चा पैदा नहीं होता, ऐसे वो पैदा हुए। और ठीक उसी समय में गोकुल में यशोदा जी को दो, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। पहले हुआ लड़का और इसके बाद में हुई लड़की। कृष्ण ने पिताजी से कहा, वसुदेव जी से, तुम हमें लेकर, अभी मैं बालक रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे लेकर के गोकुल में दे आ और वहाँ पर एक लड़की होगी उसको ले आ। ये नहीं बतलाया कि मैं वहाँ पर उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी जब लेकर के चले, बेड़ी हथकड़ी खुल गई, लोहे के कपाट खुल गए, पहरेदार सब सो गए और बड़ी रिमझिम जो वर्षा हो रही है, बड़ी जोर से बरसन होने लगी, काले मेघ गर्जन करने लगे, मूसलाधार वर्षा होने लगी, कोई घर से ना निकले, वसुदेव जी उनको लेकर के जाएंगे कोई देख न सके। कृष्ण ने ये सारी व्यवस्था कर दी। जब लेकर के चले, जमुना में बाढ़ आई, कैसे पार करें। जब जमुना के किनारे आया, देखा बड़ी बड़ी भयंकर लहरें उठ रही, इतने में देखा एक सियार सियार पार हो रहा है। बस को देखते ही झट उसके पीछे पीछे हो लिए, केवल पानी उनमें घुटने भर पानी रह गया जमुना में, चलने लगे। जमुना ने सोचा, हमारे प्राण प्रियतम अभी जा रहे हैं, इनके चरण तो धो लूं। कृष्ण को गोदी में ले रहे थे, सूप में या टोकरी में, और गोदी में ले रहे थे वसुदेव जी। जमुना जी बढ़ने लगी कृष्ण के चरणों को पाने के लिए, जो जो उठाने लगे और तेवतर जमुना बढ़ने लगी। उन्होंने सिर पर उठाया, कृष्ण के पैर पीछे और सिर इधर में। जब जमुना जी यहां तक आई तो डर गए। इतने में कृष्ण ने अपने पैर को थोड़ा सा लंबा किया और पानी में स्पर्श कर दिया जमुना जी उनके चरणों को पखार करके, और एकदम झट नीचे आ गई। बस घुटना भर पानी बस रह गया, आसानी से पार कर गए। वहां पर पहुंचे गोकुल में, सभी लोग सो रहे हैं, वर्षा हो रही है। यशोदा जी को पुत्र हुआ है या कन्या, या पुत्र और कन्या दोनों, उनको कोई पिता पता नहीं। वो मीठी मीठी कुछ मूर्छित अवस्था में थी, प्रसव काल में कुछ वेदना होती है, उस वेदना को वो समझ रही। वसुदेव जी जो अपने टोकरी में उनको जो ले जा रहे थे, कृष्ण जो वहां पर थे, उन्होंने चतुर्भुज कृष्ण को खींच लिया, अपने में मिला लिया, एक बन गए। और उसी एक कृष्ण को उन्होंने वहां पर रख दिया और उनकी लड़की को ले लिया। उनको भी पता नहीं जिसको जमज संतान पैदा हुई, उनको पता जे एक ही लड़की पैदा हुई। लेकर के लौटे और लेकर के लौट करके ज्यों ही कारागार में पहुंचे, उसी समय में जेल खाना बंद हो गया, वर्षा भी धीरे धीरे कम हो गई और कृष्ण छोटे, वो लड़की छोटी सी बन करके रोने लग गई। उसकी आवाज सुनकर प्रहरी जग गए और कंस को खबर दी। कंस दिन रात चैन नहीं, देवकी का आठवां गर्भ हमें मारेगा, दिन रात चिंता करता था। चिंता करते करते सब कुछ भूल गया, उसके पाप भी भूल गए। यदि कोई शत्रु भाव से भी कृष्ण का चिंतन करे, चिंतन करते करते तन्मय हो जाए तो उसके सारे पाप दूर हो सकते हैं और कृष्ण को वो किसी न किसी रूप में प्राप्त कर लेगा। और यदि कोई माता के समान, प्रियतमा के समान, सखा के समान उनको प्रेम से बुलाए तो न जाने क्या हो जाए, उसके बटीभूत हो जाते हैं, उनके पुत्र हो जाते हैं, पति हो जाते हैं, प्रियतम हो जाते हैं, सखा बन जाते हैं। ऐसे कृष्ण वो तो रोने लगी, कंस दौड़ करके आया और अपनी बहन के हाथों से छीन लिया। देवकी रोने लगी, इसलिए रोने लगी, भैया इसको मत मार, ये तो बेटी है, बेटा नहीं, ये तुम्हारा संतारक नहीं होगा, मरने वाला नहीं होगा, तुम इसे छोड़ दे, यदि तू छोड़ देता है तो मैं अपनी इसी कन्या की शादी तुम्हारे लड़के के साथ में कर दूंगी, तू इसे मत मार। किंतु माना नहीं, उसने उठाया पत्थर पर जो ही मारा तो ही आकाश में उड़ गई और उसके आठ हाथ निकल गए और आठों हाथों में आयुध लेकर के, अस्त्रों को लेकर के और कंस के सिर पर 100,000 जमाई। लगते ही वो तिलमिला करके गिर पड़ा और ऊपर में देखा, अरे ये तो हमारी आराध्या देवी कुल देवी हैं, दुर्गा जी। दुर्गा जी ने कहा, रे कंस तू हमें क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया कहीं दूसरी जगह, अब तुम सावधान रहो, हमको तुम नहीं मार सकता, इसलिए सावधान रहो। ऐसा कह करके और आकाश में लीन हो गई, चली गई। कंस ने कहा, अरे हमारी आराध्या देवी ये कहीं ये दूसरी जगह पैदा हो गया, और भी चिंतित हो गया और इनसे क्षमा मांग करके कहने लगा कि हमने गलती की, तुम्हारे लड़कों को मैंने मारा, इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ये असुर दुष्ट व्यक्ति आज प्रसन्न है, कल फिर क्रोध करेगा। जो क्षण मात्र में प्रसन्न होता है और क्षण मात्र में ही फिर क्रोधी हो जाता है, उसका बात का कोई ठीक नहीं, इसलिए इसके बाद कभी विश्वास नहीं करते और वो प्रसन्न रहे। लड़के मर गए अपने काल के वजह से, इसलिए उन्होंने कोई दुख और शोक नहीं प्रकट किया, भगवान के उसी में ही प्रसन्न रहे। इसलिए आज अभी रात के 12 बजे हैं, कृष्ण का जन्म हो गया है, अभी तेज भी हो गया है, अब एक महामंत्र कीर्तन करेंगे कृष्णदास जी, और इसके बाद में हम लोग वहां पर